भाई हमारे लिए इस हफ्ते में बहुत सारे हवादिस जो है पेश आए हैं। उसमें सबसे बड़ा हादसा तो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब नवरल्लाहु मरकज़हु की वफ़ात का हादसा है। इसी गुज़श्ता हफ्ते में आपका इंतकाल हुआ, आप सब जानते हैं। ये अल्लाह के इस तरह के मकबूल और मखसूस बंदों का दुनिया से चला जाना, ये वाकईतन पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा खसारा है। और ऐसे हजरात का वजूद उम्मत के लिए फितनों से हिफाजत का सबब है। रिवायतों में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जो हैं मेरी उम्मत के लिए अमान है, यानी उनके रहने से वो अजाब या वो मुसीबतें, वो फितने जो आने वाले हैं आएंगे नहीं, और जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो उनकी वजह से वो जो फितने रुके हुए थे वो आएंगे। इसी तरह अल्लाह की इस तरह के मकबूल और मखसूस बंदों का वजूद उम्मत से बहुत सारे फितनों के टलने का और उम्मत की इन फितनों से हिफाजत का सबब होता है। इसलिए ऐसे हजरात का चला जाना वाकईतन उम्मत के लिए बड़ा खसारा है। जो दुआ सिखलाई गई है उसमें है, वला तफ्तिन्ना बाद हुए, अल्लाह इनके हमारे अंदर से रुखसत होने के बाद हमको किसी फितने में मुब्तला न कीजिए। मालूम है उनके जाने से फितने के इम्कान बढ़ जाते। हमारा हज़रत शेख का इस तरह दुनिया से रुखसत होना वाकईतन उम्मत के लिए बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ा खसारा है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ये इल्मे दीन की खिदमत के अंदर खपाई। पढ़ने के लिए जब सहारनपुर आए तो शुरू ही से तबीयत में कुछ कमज़ोरी और बीमारी थी। ये बीमारी बाद में भी रही, मैंने भी देखा बीमार बहुत उमूमन बीमार रहते थे, लेकिन बीमारी के बावजूद पढ़ने का सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं हुआ। बीमार ऐसे हुए कि जो है चारपाई से उठना मुश्किल था। असातिज़ा ने तजवीज़ किया ज़िम्मेदारों ने कि भाई वापस वतन चले जाओ, जब ठीक हो जाओ तो आना। अगर शेख रहमतुल्लाह अली ने भी कहलवाया, कहा कि भाई तुम अपने घर वापस चले जाओ, जब तबीयत ठीक हो तो आ जाओ। तो कहना है मैं तो यहीं रहूँगा। इसी बीमारी में चारपाई पर पड़े पड़े कान में आवाज़ आएगी तो कहने उन्होंने फरमाया कि इस बीमारी में रहकर क्या करोगे, कान में आवाज़ पाई किनारे पर चार भाई में पड़ा सदर भरा ठीक है पड़ा रहे। तो बहरहाल ये तालीम इल्मी के ज़माने में इल्मी तलब का ये शौक़ था कि इतने बीमार होने के बावजूद और बड़ों की तजवीज़ के बावजूद घर जाना उन्होंने पसंद नहीं किया, बल्कि वहीं पड़े रहे। इससे इल्म का जो जज्बा और शौक़ था, तलब थी, उसका अंदाज़ा होता है। चनाचे वहीं रहे, वहीं से फरागत हासिल की। और वैसे तो बचपन में पैदाइश के बाद 5 साल की उम्र थी, उसी हालत में 5 साल 10 महीने के थे, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। नाना के यहाँ रहे, अपने वतन के करीब एक मदरसे में जो है इब्तदाई किताबें फ़ारसी की और अरबी की शरह जामी वगैरह तक की, नूर अनवार वगैरह तक की पढ़ी, और फिर सहारनपुर आए थे। सहारनपुर में तकमील की और फिर वहीं आपका जो है बहैसियत मुइन मुदर्रिस के जो है तकरर हुआ 7 रुपये तनख्वाह में। उसके बाद धीरे धीरे इजाफा हुआ। तो बहरहाल वो तो वहीं पढ़े, वहीं उन्होंने जो है इसी को तरजीह दी और बाद में फिर जो है चंद ही सालों में तदरीस के लिए तकररी जो हुई थी उसके 4थे और 5वें साल ही में आपको बुखारी शरीफ दी गई। मुझे याद है मैं देवबंद में मेरा आठवां का साल था, शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अगला साल मेरा वहाँ था फ़नून की तकमील का। हज़रत शेख ने वो आखिरी साल बुखारी शरीफ पढ़ाई और उसके बाद जब बुखारी ख़त्म हुई तो मौलाना यूनुस साहब के हवाले कर दिया, ऐलान कर दिया। उस पर बड़ी चहमी गोयाँ भी हुई थी, एक नौजवान को अभी उनको इतना तजर्बा भी नहीं है, उनको बुखारी शरीफ जैसी किताब इतने बड़े इदारे के अंदर दे दी गई। लेकिन हमारा हज़रत शेख का फैसला था इसलिए उस पर कोई चूचा कर सकता नहीं था। उस दिन से आज तक पूरे 50 साल हुए आपने बुखारी का दर्शन दिया, और इन हदीस के सिलसिले में आपकी जो महारत को और आपके इख्तिसास को और आपके तजर्बे को सारी दुनिया तस्लीम करती है। इस वक्त गोया आलम इस्लाम में इल्म हदीस के अंदर आप जैसा कोई था नहीं, गोया आपकी खसूसियत समझी जाती थी। अरब के उलमा भी आप जब उस तरफ का सफ़र करते थे तो आपसे इस्तिफादा करते थे। बहरहाल ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी सआदत और फ़ख्र की चीज़ थी हम लोगों के वास्ते। आपकी वफात से, उस सआदत से और उस बरकत से हम महरूम हो गए। ये हमें दुआओं का अहतमाम करना चाहिए, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और आपके जाने से जो खला हुआ है अल्लाह ताला उसको बेहतर से बेहतर तरीके से पूर करे। और आलम इस्लाम का खला हुआ, हिंदुस्तान का हुआ, मदरसे का हुआ, अल्लाह अपने फजल से इसको पूर फरमाए। दूसरा हादसा हजरत मौलाना इस्माइल साहब बदात रहमतुल्लाह अलैह का है। आप हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के मुजाज खलीफा थे। फरागत के बाद हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सहारनपुर रहे, और जब तक हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह हयात रहे वहाँ तक आपकी खिदमत में रहे, और फिर हजरत ही के साथ साथ वहाँ मदीना मुनव्वरा गए थे। हजरत की वफात के बाद वहीं मदीना मुनव्वरा ही में सुकूनत पजीर हो गए। तब से आज तक पर वहीं मदीना मुनव्वरा में इंतकाल भी हुआ। वहाँ जो लोग भी जाते थे, मुलाकात करते थे, देखते थे, जानते हैं आपका आम मशगला जो है कुरान पाक की तिलावत, रोज़ाना एक कुरान ख़त्म करते थे। उमूमन वो हमेशा कुरान ही हाथ में होता था। ये अल्लाह ताला ने वहीं मदीना मुनव्वरा की मौत अता फरमाई। ये भी हम लोगों के लिए हादसा है। और अभी 2-3 रोज पहले हजरत मौलाना हकीम इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के दामाद होते हैं, मौलाना शाहिद साहब के वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुसर, और मौलाना ज़ुहैर वहाँ निज़ामुद्दीन में है इस वक्त, उनके नाना होते हैं हकीम मौलाना मोहम्मद इलियास साहब, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनका भी बड़ा कदीम रबता था। रमज़ान मुबारक में हजरत का कुरान सुनने का इन्हीं के हवाले थे। यही साल आ साल से हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह का कुरान रमज़ान में दौर सुनने की खिदमत अंजाम दी उन्होंने। ये और उनके भाई, बड़े भाई थे हजरत मौलाना यहिया मुफ्ती यहिया साहब को, महाराज उनका भी एक वजूद था, बरकतें थी, उनका भी 2-3 रोज पहले इंतकाल हुआ। बहरहाल ये हमारे लिए ये हफ्ता और अभी माजी करीब में बड़े बड़े उलमा दुनिया से रुखसत हुए हैं, और जो हालात दुनिया के हैं इस वक्त करवट ले रहे हैं, बड़े संगीन हैं और काबिल फिक्र हैं। इसलिए ज़रूरत है कि दुआओं का अहतमाम हो, तौबा और इस्तिग़फ़ार का अहतमाम हो। हम लोग इन हालात के सिलसिले में बैठ कर चर्चे तो बहुत करते हैं, घंटे घंटे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हमारा वक्त उसमें निकल जाता है। लेकिन ये घंटों तक चर्चा करने वालों से पूछेंगे, भाई आपने दुआ में कितना वक्त लगाया, दुआ का कोई अहतमाम किया, तो इसकी तरफ से मुकम्मल गफलत बरती जाती है। नहीं, हम में से हर एक अपना मामूल बना ले, रोज़ाना सलातुल हाजत पढ़ करके उम्मत की अल्लाह ताला इन फितनों से हिफाजत फरमाए, और जो हालात हैं अल्लाह ताला शाहिर इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। पूरे आलम के अंदर ही हालात अहले इस्लाम के लिए बड़े संगीन हैं, और हमारे मुल्क के अंदर भी हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। ऐसी गोया दौर में ज़रूरत है कि हम में से हर एक जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू और इनाबत करे, सलातुत तौबा पढ़ने का अहतमाम करे, सलातुल हाजत पढ़ करके दुआओं का अहतमाम करे, रोज़ाना इस्तिग़फ़ार और तौबा का अहतमाम हो। ये अपने घर के लोगों को भी इसकी तरफ मुतवज्जे किया जाए, जितना ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार का अहतमाम होगा उसकी वजह से ये जो है ये मुसीबतों से حفاظت ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے عذاب سے امان کی دو چیزیں بتلائی, وما کان اللہ یعذبہم وانت فی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ نبی آپ کا وجود ان کے درمیان میں ہے, آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دیں گے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے یہ امان تو ختم ہو گئی. البتہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور جب تک وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں نہیں ڈالیں گے. اس لیے استغفار جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. اپنے ذاتی مصائب, ذاتی حالات, ذاتی تکالیف کے لیے بھی بہت جو ہے مجرب عمل ہے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اگر 300 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے, استغفار میں بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, بارہ اور بھی جو صیغے ہیں کوئی بھی صیغہ ہو تو 300 مرتبہ اگر ہے, کیونکہ کثرت کا کم سے کم عدد 300 بتلایا گیا ہے, اس کا اگر اہتمام کریں گے تو اپنے جو حالات ہیں ان میں بھی بہت کچھ تبدیلی آ جائے گی. اور اجتماعی طور پر تمام آدمی اس کا اہتمام کریں گے تو امت کے حالات میں بھی تبدیلی آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے تاکید فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من 70 مرۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرو, اس لیے کہ میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. بہرحال اس کا اہتمام سب لوگ اس کا اہتمام کریں, اپنے لیے لازم کر لیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. آپ ایک وقت فارغ کر لیں روزانہ 15-20 منٹ, اس میں صلاۃ التوبہ پہلے پڑھ لیں, اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے اور پوری امت کے حالات کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ان حالات کو اپنی قدرت کاملہ اور رحمت شاملہ سے بدل سکتے ہیں, اور کوئی علاج نہیں ہے. اس وقت جو صورت حال ہے وہ مایوس کن ہے, اور اس وقت جو ہے اب ایسے ظاہری اسباب کے اعتبار سے جب لوگ سوچتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے, وہ ایک پل میں مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا اہتمام کیا جائے, اور اپنے حالات کو درست کرنے کا بھی اہتمام کیا جائے, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچانے کا, اپنے گھر میں جو اسباب ہو ٹی وی وغیرہ جس میں 24 گھنٹے گھر کے لوگ مشغول رہتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیے, اس کو نکالو, دور کرو. آپسی حقوق جو ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام, خاص کر کے بندوں کے حقوق, جو حق تلفیاں ہوتی ہیں, لوگوں کا حق جو مار لیا گیا ہے اس کو ادا کرنے کا, یہ چیز بھی عذاب کا عموماً باعث ہوتی ہے. اور آج کل اس کی طرف سے اتنی غفلت برتی جاتی ہے, لوگوں کے پیسے رقمیں باقی ہوتی ہیں اور ان کو ادا کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. یہ نہیں, اس کے کوشش کرو جلدی سے جلدی اپنے آپ کو اس سے جو ہے سبکدوش کرنے کا اہتمام کیا جائے, آپسی حقوق کو ادا کرنے کا. اور آپ قطع رحمی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے وہ بھی بہت عام ہو گئے. ہر گھر میں بھائی بھائی کے اندر لڑائی ہے, بھائی بہن میں لڑائی ہے, بہن بہن میں لڑائی ہے, باپ بیٹے میں اختلاف ہے. یہ چیز بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو دور کرنے, لا تنزل الرحمت ولا قوم فیہم قاطع رحم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایک آدمی قطع رحمی اور کرنے والا اور رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا ہو. پوری قوم میں ایک آدمی ایسا ہو تو پوری قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی. گھر گھر میں اگر ایسے لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس کا بھی اہتمام, آپس کے ان معاملات کو درست کر لو, آپس میں مل جل کر کے ٹھیک کر لو, حقوق ادا کر لو, ادائیگی کے لیے یہ کر لو, آپس میں معافی تلافی کرو, رشتہ داروں کے ساتھ بھی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو, انشاءاللہ امید ہے ان حالات میں تبدیلی آ جائے. اس کا ہر آدمی اہتمام کرے, اپنے گھر میں بھی اس کی کوشش کرے اور اپنے متعلقین کو بھی اس کے لیے آمادہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.